आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामानी कमेटी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया है। बिहार मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन गई है जहां फी पोलिंग मरकज 1200 से कम वोटर्स वोट डालेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इस कदम का मकसद पोलिंग के अमल को और ज्यादा आसान बनाना है। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो नासा के इश्तराक से तैयार करदा अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सयारचा निसार अगले हफ्ते लॉन्च करेगा। बांग्लादेश में फिजाइया के तैयारे के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। और शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरो हम्पी फिडे खवातीन आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात बताते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तहरीर करदा खत में जनाब धनखड़ ने कहा कि सेहत की देखभाल को तरजीह देने और तिब्बी मशवरे पर अमल करने के लिए उन्होंने नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। उन्होंने अपनी मुद्दत कार के दौरान सदर जमहूरिया की गैर मुतजलजल हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जनाब धनखड़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वुजरा की मुअज्जज काउंसिल के तहत भी तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से उन्हें जो गर्मजोशी, एतमाद और प्यार मिला है वो हमेशा उनकी यादों में महफूज रहेगा। जनाब धनखड़ ने कहा कि वो इस अजीम जमहूरियत में नायब सदर के तौर पर हासिल किए गए अनमोल तजुर्बात और बसीरत के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन पार्टियों की हंगामा आराई के सबब कार्रवाई में रुकावट आई। वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अलावा दीगर मामलात पर फौरी बहस का मुतालबा कर रहे थे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि दोनों ऐवानों में कल उस वक्त हंगामा आराई देखने में आई जब अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट में नारे लगाने लगे और इन मामलात पर मुसलसल बहस का मुतालबा करने लगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया कि हुकूमत पार्लियामेंट में हर मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। तहम अपोजिशन के अराकीन ने शोर व गुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई तीन मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कई अराकीन पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान कल मुनक्किदा पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी की मीटिंग में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने का फैसला किया गया, जिसे मुसल्ला अफवाज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किया था। इस पर बहस करने के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पर बहस के लिए 12 घंटे और राज्यसभा में इस पर बहस के लिए 9 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन आज लोकसभा में रियासत गोवा के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी के अजसर नौ तरतीब से मुतालिक बिल 2024 गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनवाल समंदर के रास्ते सामान ले जाने से मुतालिक बिल 2025 पेश करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि उसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई इकदाम किए हैं, जिनमें पायदार रोजगार पैदा करने और घरेलू आमदनी को बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो दी गई है। ये बात कल लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जरूरी गजाई अशिया के इजाफी जखीरे को बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की स्ट्रेटेजिक फरोख्त की और रियायती कीमतों पर चुनिंदा गजाई अशिया की खुर्दा फरोख्त में सहूलत फराहम की। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि सरकार ने इन इकदाम के मुस्बत नतज बरामद किए और इसके नतीजे में खुर्दा महंगाई की औसत शरह साल 2023-24 में 4.5% से कम होकर 4.6% हो गई, जो कि गुज़िश्ता 6 साल में सबसे कम है। बिहार मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां हर पोलिंग मरकज पर 1200 से कम वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। कल इसका ऐलान करते हुए चुनाव कमीशन ने कहा कि इस कदम का मकसद लोगों की लंबी कतारों को कम करना और पोलिंग के अमल को और ज्यादा आसान बनाना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासत भर में 12,817 नए पोलिंग मराकज का इजाफा किया गया है। इससे कबल एक पोलिंग मरकज पर 1,500 राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा हद थी, जिसको वोटर फहरिस्त की खसूसी नजरसानी मुहिम SIR के तहत कम करके 1,200 कर दिया गया है। पोलिंग मराकज में इस इजाफे के साथ ही बिहार में पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद अब 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई है। चुनाव कमीशन ने कहा कि रियासत में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी मुहिम के तहत अब तक 7,16,00,000 से ज्यादा फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। चुनाव कमीशन ने मजीद कहा कि अगले महीने की पहली तारीख से अवाम में से कोई भी शख्स वोटर फहरिस्तों के मुसवदे में किसी भी किस्म के इजाफे, हजफ और तरमीम के लिए एतराजात दर्ज करा सकता है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने तलबा के तहफ्फुज़ को मजीद यकीनी बनाने के लिए अपने इल्हाक शुदा स्कूलों को सूती और बसरी रिकॉर्डिंग के साथ हाई रेजोल्यूशन कैमरे नसब किए जाने को लाजमी करार दिया है। नए जाब्ते के मुताबिक स्कूलों में आने और जाने के मकामात, राहदारियों, सीढ़ियों, क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, खेल के मैदान और दीगर सभी मकामात पर कैमरे नसब किए जाएंगे। अलबत्त बैतुलखला और वॉशरूम इसमें शामिल नहीं हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सयारचा निसार लॉन्च करेगी। इसे अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से दागा जाएगा। GSLV-F16 हेवी लिफ्ट रॉकेट इस सयारचे को 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनमस मदार में पहुंचाएगा। निसार सयारचा हर 12 दिन बाद पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और हर मौसम में दिन और रात हाई रेजोल्यूशन डेटा फराहम करेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
नासा के साथ मिलकर तैयार किया गया निसार सयारचा आसमान में बारीकी से निगाह रखने वाला आला होगा। यह अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक पहला सयारचा होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर से लैस है। नासा के एल बैंड और इसरो के एस बैंड रडार, नासा के 12 मीटर के मेश रिफ्लेक्टर एंटीना का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इसरो के मॉडिफाई किए गए सैटेलाइट से मरबूत किया गया है। एल बैंड रडार घने जंगलों और घनी झाड़ियों के अंदर भी देख सकता है, जबकि एस बैंड से सतह की इंतहाई वाजे तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। ये सयारचा पहली मर्तबा स्वीप सार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जमीन का मुशाहदा करेगी। ये रडार जमीन की सतह पर समंदरी बर्फ में तब्दीली, जंगलात मिट्टी की नमी में बदलाव, सतह जमीन पर मौजूद पानी की मैपिंग और कुदरती आफात के इम्कानात का पता लगा सकते हैं। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चंद्रयान 2 के लॉन्च की आज 6 सालगिरह है। इस मिशन का मकसद चांद के कुतुब जनूबी पर तवज्जो मरकूज करते हुए चांद की नक्शा साजी, जोग्राफियाई मुताला, मादनी तकसीम और सतह की साख्त का मुताला करना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके में पीर की शाम तरबियती तैयारे को पेश आए हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 169 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तैयारा परवाज भरने के कुछ ही मिनट बाद ढाका माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के अहाते में जा गिरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुए जानी नुकसान, खुसूसन छोटे तलबा की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन मदद और मावनत फराहम करने की पेशकश भी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश फजाइया का F-7 तरबियती जंगी जहाज ढाका शहर के कुर्मिटोला में वाक़ बीर उत्तम खांडकर एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। इस हौरनाक हादसे ने दुनिया के सबसे गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक ढाका में एयरबेस के काम करने पर फौरी सवाल उठाए हैं। ढाका के ज्यादातर शहरियों के मुताबिक इस वाकये ने तवील अरसे से पाए जाने वाले खदशात को दोबारा जन्म दिया है। दहाइयों के जहाज उड़ाने के तजर्बे के हामिल बांग्लादेश के साबिक कप्तान अब्दुल्ला फारूक ने कमर्शियल और शहरी जोन से करीब फौजी तैयारों के ऑपरेशन पर अपने खदशात का अवामी तौर पर इजहार किया है। ढाका से नवसंग परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
बलूच इंसानी हकूक की तंजीम ने बलूचिस्तान और सिंध के सूबों में जबरी गुमशुदगियों के सिलसिले के दरमियान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 4 शहरियों के अगवा की शदीद मजम्मत की है। اس دوران بلوچستان انسانی حقوق کونسل نے اپنی سالانہ رپورٹ برائے 2024 پیش کی جس میں پورے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں خطرناک حد تک اضافے کی بات کہی گئی ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پورے سال کے دوران کم از کم 830 افراد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا جبکہ 480 افراد کو قتل کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، تلنگانہ اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں الگ الگ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، جموں کشمیر، ساحلی کرناٹک، چھتیس گڑھ، آسام، ہماچل پردیش، میگھالیہ اور اروناچل پردیش کے علاقوں میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ناگالینڈ میں شدید بارش کی وجہ سے تودے کھسکنے سے نقل و حمل کے راستوں پر، خاص طور پر قومی شاہراہ نمبر 29 اور قومی شاہراہ نمبر 2 پر بڑے پیمانے پر رکھنا پڑا ہے۔ یہ راستے ریاست کو اندرونی طور پر جوڑنے اور پڑوسی ریاست منی پور سے ربط برقرار رکھنے میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان کی خبر قومی شاہراہ نمبر 2 پر پھیساما سے ہے، جہاں جون کے مہینے سے تودے کھسکنے کے واقعات نے کوہیما اور منی پور کے درمیان سڑک رابطے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ وزیراعلی نیفیو ریو نے نائب وزیراعلی ٹی آر زیلانگ کے ہمراہ کل تودے کھسکنے سے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا۔ وزیراعلی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جلد سے جلد معمول کے حالات بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو کم از کم دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز تک ناگالینڈ کے مختلف مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شطرنج میں بین الاقوامی ماسٹر دیویا دیشمکھ جارجیا کے بتومی میں جاری فیڈے خواتین عالمی کپ 2025 کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ ایک ریپڈ ٹائی بریکر میں دیویا نے اپنی ہم وطن گرینڈ ماسٹر ہریکا درونولی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اب وہ اپنی ہم وطن کونیرو ہمپی کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں دیویا کا مقابلہ چین کے گرینڈ ماسٹر ٹین زونگی سے ہوگا، وہیں ہمپی کا مقابلہ دوسری چینی کھلاڑی لے ٹینگجین سے ہوگا۔ یہ میچ آج شام گرینڈ بیلاجیو کے مقام پر ہوگا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے نے اسپیشل اولمپکس بھارت SOB فٹ بال ٹیم کو کل نئی دلی میں مسلسل دوسری بار گوتھیا اسپیشل اولمپک ٹرافی جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ محترمہ کھڑسے نے کہا کہ گوتھیا کپ کی جیت حکومت، کارپوریٹس اور اسپورٹس فیڈریشنز کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے۔ ٹیم کو مبارکباد دینے کے لیے منعقدہ تقریب میں SOB کی صدر ملکہ نڈا اور SOB گجرات کی چیئرپرسن گیتا مانڈویا اور دیگر نے شرکت کی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے نائب صدر جگدیپ دھنکر کے اچانک استعفے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبارات کے مطابق صدر جمہوریہ کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں انہوں نے خرابی صحت اور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل آوری کو اپنے استعفے کی وجہ بتایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن کل دونوں ایوان میں ہنگامہ آرائی کے بعد کاروائی ملتوی کیے جانے کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 21 اگست تک جاری رہے گا۔ روزنامہ ملاپ نے بنگلہ دیش فضائیہ کی تربیتی طیارے کے حادثے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ پرواز بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد ہوئے اس حادثے میں پائلٹ سمیت 22 لوگوں کی موت ہو گئی۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث کرنے کے لیے 16 گھنٹے کا وقت مختص کیا ہے۔ بہار ملک کی پہلی ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں فی پولنگ مرکز 1200 سے کم ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد پولنگ کے عمل کو اور زیادہ آسان بنانا ہے۔ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو ناسا کے اشتراک سے تیار کردہ ارضیاتی مشاہدے سے متعلق سیارچہ نثار اگلے ہفتے لانچ کرے گا۔ بنگلہ دیش میں فضائیہ کے طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ اور شطرنج میں بھارت کی دیویا دیشمکھ اور کونیرو ہمپی فیڈے خواتین عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔